जयधवला पुस्तक तेरवी लेक्चर नंबर 7 ओ
नमः सिते
ओ नमः सिते ओ नमः सिते ओ शुद्धात्मने नमो नमो सिद्धारं नमो आयर्यान् नमो वच्छायान् नमो योरे सौवताहुं कवियगणधायिकं भवियजनानन्दकारिणं वीरं नमिऊनभणिसामो यह श्री भीमसेन आचार्य की जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा शून्य सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा इति शुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। तेरहवीं पुस्तक में अभी हम दर्शन मुख की छपना का अर्थाधिकार देखते हुए पृष्ठ संख्या 55 पर आ गए। 55 कल हमने देखा था कि जब सम्यक मिथ्यात्व का भी सर्व संक्रमण होता है तो सम्यक प्रकृति की स्थिति कितनी बाकी रहती है, तो उसमें दो उपदेश थे और प्रवाह्यमान उपदेश के अनुसार 8 वर्ष प्रमाण स्थिति बाकी रहती है, इस बात पर चर्चा चली थी। अब उसके आगे वाला जो सूत्र है 55 उसको हम देखेंगे। एदम मे थिदिखंडये निथिदे ताधे जहन्नगो सम्मामिच्छत्तस्य थिदिसंकमो उक्कस्सवो पदेश संकमो सम्मत्तस्य उक्कस्स पदेश संतकम्मन। जैसे हमने पहले मिथ्यात्व का जब सर्व संक्रमण होता है तब उसका जघन्य स्थिति संक्रमण, उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश तत्व निसंत कम्बन जिसको कहेंगे, ऐसे ही यहाँ पर जब सम्यक मिथ्यात्व की अंतिम खाली सम्यक प्रकृति रूप से होती है यानी स्थिति कांड का अंतिम समय, तो क्या होता है उसका जघन्य स्थिति संक्रमण, उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण और सम्यक्त्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म। 55 पेज पर इसको भी पढ़ेंगे। सम्यक मिथ्यात्व के इस अंतिम स्थिति कांडक के अंतिम फाली रूप से सम्यक्त्व के ऊपर सर्व संक्रमण द्वारा संक्रमित कर संपन्न होने पर यानी समाप्त होने पर उसी समय सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति संक्रम होता है, क्योंकि अनिवृत्ति रूप परिणामों के द्वारा दुरापकृष्टि रूप से घातित करने के बाद, हमने देखा था दुरापकृष्टि होती थी उसके बाद भी कितनी बार स्थिति कांड घात हुए थे, उसके बाद शेष बची स्थिति के जघन्य होने में विरोध का अभाव है, परंतु उस समय सम्यक मिथ्यात्व का प्रदेश संक्रम उत्कृष्ट होता है, भले स्थिति इतनी घटाई है परंतु उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ परमाणु है, क्योंकि गुणित कर्मांशिक जीव की विवक्षा में उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होने में विरोध का अभाव है। यानी सभी जीवों की अपेक्षा से बात करेंगे तो उत्कृष्ट किसके होगा, तो जो गुणित कर्मांशिक से आया है और जल्दी में जल्दी जिसने सपना प्रारंभ की है वो जीव लेगा, परंतु एक जीव की अपेक्षा देखेंगे तो उसके अन्यत्र जितना उसका प्रदेश था उससे ज़्यादा होगा कि नहीं, यहाँ पर उसकी अपनी अपेक्षा था। तथा उसी समय सम्यक्त्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होता है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम का प्रतिग्रह होने से, प्रतिग्रह ने जिसमें वो संक्रमित होती है एक्सेप्ट करने वाला उसकी उपलब्धि होती है। इसके बाद दो समय कम उदयावली के गलित होने पर, जैसे हमने मिथ्यात्व के बारे में चर्चा की थी सम्यक मिथ्यात्व का, यानी तब उसका अंतिम निषेक रहेगा सम्यक निश्चात रूप से जघन्य स्थिति सत्कर्म दो समय काल प्रमाण एक स्थिति रूप होता है, यह बिना कहे ही जाना जाता है। मिथ्यात्व में हमने इसकी चर्चा विस्तार से की थी, क्योंकि मिथ्यात्व की प्ररूपणा से ही उसका ज्ञान हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं? क्या कहना चाहते हैं? अभी आगे बढ़ेंगे, आगे का सूत्र पढ़ेंगे 56 पृष्ठ पर। अठवस्स उपदेशेन परुविज्जि हिदि, अब 8 वर्ष के उपदेश के अनुसार प्ररूपणा करेंगे। दो उपदेश थे ना, एक था 8 वर्ष और एक था ज्यादा, पल्ले का संख्या का भाग था ना, कितना था दूसरा उपदेश, क्या था
संख्या से
क्या संख्या का ज्यादा था, संख्या का 1000 वर्ष प्रमाण बताए, दो उपदेश बताए थे। तो यहाँ 8 वर्ष के जो उपदेश है, 8 वर्ष संबंधी, उसके अनुसार यहाँ कथन करेंगे। 8 वर्ष के उपदेश के अनुसार प्ररूपणा करेंगे। पूर्वोक्त दो उपदेशों में से सम्यक के 8 वर्ष प्रमाण स्थिति का निरूपण करने वाले उपदेश का ही प्रधान रूप से अवलंबन कर आगे आगे की प्ररूपणा को बतलावेंगे, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, इसी को क्यों बतलावेंगे? उसका समाधान, क्योंकि प्रवाह्यमान पने के कारण उसी की प्रधानता पाई जाती है, ये प्रधान रूप से उपदेश है। इसलिए 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्कर्म को ग्रहण करें उसको नक्की करके तद विषय स्थिति कांडक आदि की प्ररूपणा को विशेष रूप से कथन करते हुए प्रबंध विच्छेद के भयवश प्रारंभ से लेकर पूर्वोक्त स्थिति कांडक संबंधी प्रबंध के द्वारा अनुसंधान करते हुए यह कहते हैं। पूर्वोक्त स्थिति कांडक संबंधी जो प्रबंध है अभी तक जो चले आए थे, अभी इन कंटिन्यूएशन उसी की बात आगे बढ़ाएंगे, अन्य बात नहीं लेंगे, नहीं तो कहाँ प्रबंध विच्छेद, यानी वो प्रबंध है ना, उसका जो विशेष विस्तार है वो बीच में टूट जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी स्थिति कांडक की बात उठाएंगे पहले में पहले। तम जहाँ वह जैसे उपरिम प्ररूपणा संबंधी प्रबंध के अवतार को विषय करने वाला यह पृच्छावाक्य सुगम है। 56 पेज चल रहा है, नीचे का सूत्र पढ़ेंगे। अपूर्वकरणस्य पढ़म समये पलिदवमस्य संख्येजि विभागिगम खिदिखण्डयम् ताव जाव पलिदवम खिदिसंत कम्मम जादम। अने अपूर्वकरण के प्रथम समय से वो तो स्थिति कांडक का प्रमाण कितना था, पल्ले का संख्या तो होगा, कब तक ताव यानी तब तक जब तक पल्ले प्रमाण स्थिति न हो जाए। पलिदोव में ओलुत्ते पल्लोपम की स्थिति पार होने के पश्चात अभी क्या होगा, संख्या बहुगा। पलिदोवमस्त संख्या भागा अगाइदा संख्यात भाग यानी अनेक भाग, संख्यात्वा भाग शेष रहेगा। तम्मी गदे शेषस्य संख्येज्या भागा आगाइदा यानी वो कांडक होने के बाद फिर जितना शेष रहा उसका संख्यात भाग इतना कांडक होगा, यानी संख्यात बहुभाग संख्यात बहुभाग कांडक होते चले जाएंगे। एवं संख्येज्यानि स्थितिखण्डयस्थानि गदानि, इसी प्रकार संख्यात स्थितिखंड जाएंगे, यानी हमने उसको संख्यात 1000 देखे थे। तदो दुरावकीर्ति पलिदोवमस्त संख्येज्य भागे संत कम्मे शेषे, यहाँ बात आई ना, मूल सूत्र में लिखा है कि उसके बाद दुरापकृष्टि नाम की जो संत कम्मे ने स्थिति तत्व प्राप्त होता है शेष रहता है कितना, पल्योपम के संख्या तबा, उस वहाँ वो असंख्यात भाग जो लिखा था, तो यहाँ सूत्र की हमने रेफरेंस मिला ना 77 के बाद वाला सूत्र 57 पेज पर,
तो हमने
नहीं अभी जो रेफरेंस है अपना उसकी बात कर रहे हैं, हमने करेक्शन किया था पेज नंबर 45। इसके लिए रेफरेंस है पेज 57। मूल सूत्र फर्स्ट लाइन में अभी हम आते अपने 57 पृष्ठ पर। तो कहते तदो दुरावकीर्ति फलिदोगमस्त संख्य यदि भागे संतकम में शेष, यानी वो अंतिम संख्या तो भाग शेष रहने का अंतिम स्थान है, इसके बाद असंख्यात्वा भाग शेष रहेगा, असंख्या दो भाग निश्चय हो गए। तदो स्थिति खंड यम, इसके बाद जो स्थिति खंड होगा शेषस्थ असंख्य भागा, शेष स्थिति सत्कर्म जितना रहे हैं उसका असंख्यात बहुभाग, असंख्याता असंख्य भागा कांडक का प्रमाण।
असंख्यात बहुभाग का कांडक होता है,
वही तो मैं बता रही हूँ। स्थिति खंडयम शेषस्य असंख्य भागा, शेष जितना स्थिति सत्व बाकी है उसके असंख्यात बहुभाग कांडक प्रमाण से ग्रहण किए जाएंगे। एवं ताव, वो तब तक चलेगा, शेषस्य असंख्य भागा भागा जाव निच्छत्तम खविदम ती, ये कब तक चलेगा, जब तक निच्छा तो की सपना हो जाए तब तक। सम्मा मिच्छत्तम की खवेन्तस्य शेषस्य असंख्यज्या भागा जाव सम्मा मिच्छत्तम की खविज्यमानं खविदं संक्षुभ्यमानं संक्षुब्धम, यानी समय मिथ्या तो में भी ऐसा ही होगा, असंख्या गोभाग असंख्या गोभाग से कांडक होंगे। साधे चेव सम्मत्तस्य संतकम्मम अठवस्त क्षिदिगम जादम, और तभी इसका जब अंतिम कांडक नष्ट हो जाएगा तब सम्यक प्रति स्थिति सत्कर्म 8 वर्ष प्रमाण रह जाता है। अभी हम हिंदी में पढ़ेंगे।
कहते आगे जो संप्रदाय की बात उठाई थी उन्होंने कि संप्रदाय में ऐसा आया है, तो वो ये तो विभाजन उम्र के बोधे के पहले से ये दो उपदेश चले आ रहे हैं, जैसे उनका बताना था
ये संप्रदाय ने श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय नहीं, उपदेश को ही संप्रदाय का दो धारा है ना उपदेश की, उसको संप्रदाय का निकालो आपका जो प्रश्न है। संप्रदाय का अर्थ है वो तो जो जैनियों में जो विभाजन हुए उसकी बात अच्छा। नहीं है उसकी नहीं है ये, जब हाँ दो उपदेश है ना वहीं पर बताया था संप्रदाय की कोई ऐसा शब्द आया था उसमें।
ये शंका में संप्रदाय का प्रवाहमन
कहाँ कहाँ पेज नंबर
पे, पेज नंबर 54 पे ये
शंका है, नंबर 54 और शंका पूछी थी इस संप्रदाय का अप्रवाहमानपना किस कारण से जान, इस संप्रदाय ने कौन सा संप्रदाय कि जो संख्या हजार कहने वाला जो संप्रदाय है, यानी जो उपदेश की धारा चली आई है उसको संप्रदाय का अप्रवाहमान किस कारण से जाना जाता है। हाँ संप्रदाय में आता है ना वो उनका तो स्थानों को ऐसी संप्रदाय उसकी बात यहाँ नहीं है।
हाँ
अच्छा है पूछ लिया,
नहीं क्योंकि मैं सोचता है तो धवला जय धवला तो बहुत पूरी काटिना था।
हाँ क्योंकि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और कालांतर से वही शब्द अन्य अन्य अर्थों में भी संप्रदाय तो थे कभी वीरसेन स्वामी कब हुए 7वें शतक में और श्वेतांबर संप्रदाय 500 मगर उनकी श्वेतांबर की शासनों की रचना बाद में हुई। हाँ उनकी कोई बहुत बड़ी उन्होंने मीटिंग जैसे सभा किसी बाद में उनके शास्त्र लिखे गए रेगुलर। ठीक है चलो इसका अर्थ वो उस संप्रदाय से कुछ नहीं लेना देना। अभी हम हिंदी जो अभी सूत्र पढ़ा ना 56 पृष्ठ से शुरू हुआ था उसी का हिंदी 56 पृष्ठ पर नीचे पढ़ रहे हैं। अपूर्वकरण के प्रथम समय में ये फिर दोबारा स्थिति कांडक का पूरा विषय यहाँ से बता रहे क्योंकि वही स्थिति कांडक की बात उसी का विषय चल रहा है। तो कहते हैं अपूर्वकरण के प्रथम समय में पल्लवम के संख्यातवे भाग प्रमाण स्थिति कांडक प्रारंभ होता है। उस समय स्थिति कितनी थी दर्शनों की?
पृथक्व सागर,
पृथक्व लक्ष्य सागर, अन्य कर्मों में
अंतर कोड़ा कोड़ी को
उसको पृथक्व कुछ करोड़ सागर
ऐसा पृथक्व
करोड़ सागर
पृथक्व कोटी सागर
यानी अनेक करोड़, अगर उसमें कितने लाख करोड़ हो जाए। तो यहाँ का स्थिति कांडक जो प्रारंभ हुआ है वो पल्ले के संख्यात्वे भाग प्रमाण पल्लोपम प्रमाण स्थिति सत्कर्म के प्राप्त होने तक, जब कांडक होते 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 पल्ले प्रमाण स्थिति शेष रह जाए, इसके बीच में हमने देखा कभी वो हजार सागर हुआ, फिर सौ सागर हुआ, पचास हुआ, पच्चीस हुआ, एक सागर हुआ और पल्ले तक कहाँ पहुँचा, तब तक कांडक का प्रमाण भले वो घटते होगा परंतु वो पल्ले का संख्यात्वा भाग ही रहा। तो पल्लोपम प्रमाण स्थिति सत्कर्म के प्राप्त होने तक उक्त प्रमाण वाले ही स्थिति कांडक चालू रहते हैं। पल्लोपम प्रमाण स्थिति सत्कर्म के अवशिष्ट रहने पर अभी इसके बाद जो कांडक हो गए, तो कहते पल्लोपम के संख्यात बहुभाग प्रमाण स्थिति सत्कर्म घात के लिए ग्रहण किया, यानी कांडक का प्रमाण संख्या बहुभाग हो गया और संख्यात्वा भाग शेष रह गया भी। उसके व्यतीत होने पर शेष रही स्थिति सत्कर्म का संख्या बहुभाग घात के लिए ग्रहण किया, यानी शेष बची हुई उसको भी पल्ले का संख्यात्वा भाग कहेंगे, जो ग्रहण किया उसको भी कहेंगे पल्ले का संख्यात्वा भाग, परंतु जितनी वहाँ शेष स्थिति है उसके संख्या बहुभाग को तो कांडक में लिया और शेष बची हुई संख्यात्वा भाग रहेगी। इस प्रकार संख्यात हजार स्थिति कांडक व्यतीत हुए। इसके बाद पल्लोपम के संख्यात्वे भाग प्रमाण स्थिति सत्कर्म के शेष रहने पर दूरापकृष्टि संज्ञा वाली स्थिति प्राप्त हुई। हर बार तो पल्ले का संख्यात्वा भाग ही शेष रहता चला जाता है, परंतु ये अंतिम स्थान है जब पल्ले का संख्यात्वा भाग शेष रहा है। इसके बाद एक कांडक होगा तभी असंख्यात्वा भाग शेष रह जाएगा। दूराश हुआ दूरापकृष्टि, तो इसको नाम क्या है, पल्लवम के संख्यात्वे भाग प्रमाण स्थिति सत्कर्म के शेष रहने पर दूरापकृष्टि संज्ञा वाली स्थिति प्राप्त हुई, ये स्थिति का नाम है। पुनः वहां से स्थिति कांडक का प्रमाण, यहाँ प्रमाण बदल जाएगा, भी शेष रहे स्थिति सत्कर्म के असंख्यात बहुभाग प्रमाण प्राप्त हुआ। इस प्रकार मिथ्यात्व के क्षय होने तक, यानी मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति कांडक तक उत्तरोत्तर शेष रहे स्थिति सत्कर्म के असंख्यात बहुभाग प्रमाण स्थिति कांडक प्राप्त हुआ। ये जो दूरापकृष्टि वगैरह है वो कौन से कर्मों में बना, सभी ने दर्शन मुनि के सब तीनों में, तीनों में हुआ ना
दर्शन।
आपने सभी कर्मों में बताया?
नहीं 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 नहीं, मेरा ध्यान नहीं था वहाँ पे, मैं तो इसी बुक पे पढ़ते बोल दिया नहीं, नहीं, नहीं मैं सोचा था कि ये जब भी क्रिया चल रही है तभी आनंद की अनुभूति जो आनंद जो होता है वो बढ़ता ही जाएगा ना। ये तो हम कर्म की बात देखते हैं, कभी जीव की स्थिति क्या है उसकी अतिंद्रिय आनंद,
वो आपने
अरे आप
उसको तो अपने अतिंद्रिय आनंद का अनुभव हो रहा है
वो बढ़ता जाएगा,
क्योंकि इसे तो बढ़ रही है उसकी
आनंद।
तो यहाँ क्या कह रहे हैं, स्थिति कांडक का प्रमाण शेष रहे स्थिति सत्कर्म के असंख्या बहुभाग प्रमाण, ये मैंने ये पूछा था कि दूरापकृष्टि हुई तो दर्शनों के तीनों में हुई थी, यानी तीनों में ही कांडक का प्रमाण अभी असंख्यात बहुभाग असंख्यात बहुभाग हो रहा था। डिफरेंस कहाँ आया, मिथ्यात्व का जो अंतिम कांडक है वो ज़्यादा बड़ा हो गया और अन्य में तभी स्थिति उसका तो उच्चावली शेष रही और बाकी कर्मों में कितना शेष रहा पल्ले का असंख्यात भाग। उसके बाद भी समय मिथ्या तो इतने बड़े बड़े कांडक होते चले जाएगा, असंख्यात बहुभाग असंख्यात बहुभाग, जब उसका अंतिम कांडक फिरेगा तो सम्यक प्रकृति कितनी, सम्यक तो की प्रकृति सम्यक तो वो कितनी शेष रही, तो 8 वर्ष है,
8 वर्ष।
इस प्रकार मिथ्यात्व के क्षय होने तक उत्तरोत्तर शेष रहे स्थिति सत्कर्म के असंख्यात भोगवाकमान स्थिति कांड प्राप्त हुआ। सम्यक मिथ्यात्व का भी क्षय करते हुए उत्तरोत्तर जो स्थिति सत्कर्म शेष रहा उसके असंख्यात बहुभाग को स्थितिकांडक रूप से घात के लिए तब तक ग्रहण किया जब जाकर क्षय को प्राप्त होने वाले सम्यक मिथ्यात्व का भी क्षय कर दिया और संक्रमित होने वाले उसका संक्रमण कर दिया। क्षय कर दिया, यहाँ क्षय का प्रोसेस पूरा ही संक्रमण के द्वारा ही संपन्न होता है। तभी सम्यक्त्व का स्थिति सत्कर्म 8 वर्ष प्रमाण हो गया। पूर्वोक्त अर्थ का हुआ है, अर्थ का उपसंहार करने वाला यह सूत्र शुभम है। पहली बात है, यहाँ सब पूरी रिवाइज कर दी उन्होंने स्थिति कांडक के बारे में। इतनी विशेषता है कि इस सूत्र में सम्मामिच्छत्तम खविज्यमानम खविदम ऐसा कहने पर सम्यक मिथ्यात्व के घाते जाने वाले स्थिति और अनुभाग पूरी तरह से घातित किए गए ऐसा अर्थ यहाँ ग्रहण करना चाहिए। ऊपर आया था ना, खविज्यमानम खविदम, जो क्षय होता हुआ क्षय को प्राप्त होता है, और आगे लिखा था संचुभ्यमानम संशुद्धम, ऐसा कहने पर पर प्रकृति संक्रम रूप से संक्रमित होने वाले सम्यक मिथ्यात्व के प्रदेश पुंज को सर्व संक्रम के द्वारा उदयावली के सिवाय समग्र ही सम्यक्त्व के ऊपर संक्रमित किया, यानी संशुभमाणम का अर्थ होता है संक्रमित किया, संशुद्धम। इस प्रकार अपुनरुक्त रूप से अर्थ का व्याख्यान करना चाहिए। अट्ठावन नंबर पर विशेषार्थ, ये पहली बार ऐसा कि सूत्र सबसे बड़ा है, उसका स्पष्टीकरण उससे छोटा है और विशेषार्थ उससे भी छोटा है। वो पूरा, हाँ सूत्र में पूरा उन्होंने उपसंहार किया ने पूरा विषय फिर दोबारा ले लिया। अब विशेषार्थ, अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर अनिवृत्तिकरण में सम्यक के 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्कर्म के प्राप्त होने तक जिन कार्य विशेषों का पहले निर्देश कर आए हैं उन्हीं कार्य विशेषों का इस उपसंहार सूत्र द्वारा निर्देश किया गया, फिर उसका सबको यहाँ रिपीट करके बताया। अन्य विशेषताओं के साथ पूरे अर्थ का विशेष स्पष्टीकरण पहले ही कराए हैं। अन्य भी विशेषताएं हमने देखी थी, वो जब बीच में असंख्या समय प्रबद्ध प्रमाण समय तक की जो उदीर्ण होने लगती है वो भी बीच बीच में जो जो कुछ होता है उन्होंने बताया। अब आगे, ताधे चेव दंसन मोन्य खवगोस्ति भन्नई, इसी समय वह दर्शन मोहनीय क्षपक कहलाता।
तो यहाँ से हम लोग जो सूत्रपुरुष वेदक की बात करें वो यहाँ से
नहीं, अभी
वो अंतर्भूत कमर स्थिति की बात की गई है,
उस अवस्था में उसका मरण हो सकता है, अब नहीं। अभी तो 8 वर्ष का सम्यक प्रकृति की स्थिति बाकी है, अब इसमें भी और कांड चले, अभी नहीं हुआ। हाँ अभी तो दर्शन मुनि का क्षपक कहलाया है, हाँ हाँ अभी भी प्रस्थापक में ही चल रहा है। इसी समय वह दर्शन मुनि क्षपक कहलाता है। इस प्रकार कहने वाले सूत्रकार का यह अभिप्राय है, पहले भी मिथ्यात्व की क्षपणा का प्रारंभ करने के प्रथम समय से लेकर सर्वत्र ही दर्शन मोह क्षपक संज्ञा विरुद्ध नहीं है, जब से उसने शुरू किया तब से उसको कहेंगे तो जरूर, किंतु यहाँ से लेकर निश्चय से ही इसके दर्शन मोह क्षपक संज्ञा जाननी चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेकर वेग से सम्यक्त्व की क्षपणा के लिए प्रवृत्त हुआ है। अथवा मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की क्षपणावस्था के समय दर्शन मोह क्षपक संज्ञा बिना विवाद के सिद्ध है, इसलिए उसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वे सम्यक्त्व संज्ञा वाले जीव गुण की प्रतिबंधक है, इसलिए उनकी दर्शन मोह संज्ञा सिद्ध होने से मंद बुद्धि जनों को भी उसमें विसंवाद नहीं है। यानी जो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व तो है या वे दोनों ही सम्यक्त्व के प्रतिपक्षी, सम्यक प्रकृति ऐसी नहीं है, इसका उदय तो चल रहा है और सम्यक तो भी बना है, तो कहते हैं कि ये जो पहले कौन से थे, सम्यक तो संज्ञा वाले जीव गुण के प्रतिबंधक, ये दो प्रकृतियां, और वो अभी उनकी क्षपणा हुई, तो दर्शन मुनि क्षपक अभी बिल्कुल निर्विवाद हम कह सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे ऐसे कहा सम्यक तो संज्ञा वाले जीव गुण की प्रतिबंधक है,
सम्यक तो के प्रतिबंधक, सम्यक तो जीव का गुण है, तो उसके प्रतिपक्षी कौन है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, तभी उनका पूरा घात हो गया है, सत्ता में ऐसे ही नाश हो गया है। अब कहते किंतु सम्यक्त्व कर्म यानी सम्यक्त्व प्रकृति दर्शन मोहनीय नहीं है, दर्शन मोहनीय नहीं है, सम्यक्त्व के घात करने वाली नहीं है, इस अर्थ में ले लो, हाँ नहीं तो आप वो शब्दशः अर्थ ले लोगे, क्योंकि वेदक सम्य दृष्टि के सम्यक्त्व गुण के साथ उसका उदय है, अपनी भाषा में वो देश गाती है, इसलिए इसका क्षय करने वाला जीव दर्शन मोह का क्षपक नहीं है, इस प्रकार की शंका से ग्रसित जीव की उस प्रकार के शंका के निराकरण द्वारा उसकी क्षपणावस्था में दर्शन मोह क्षपक संज्ञा के समर्थन के लिए यह कहा है, ऐसा यह ग्रहण करना चाहिए। यानी जब तक अभी सम्यक की क्षपणा पूरी नहीं होती हो तब तक दर्शन मोह का क्षपक चल रहा है, अभी उसकी क्षपणा चल रही है, यानी ये तो शंका को और कोई ऐसा कहेगा कि सम्यक तो दर्शन होनी है क्योंकि वो सम्यक गुण का तो घात नहीं करती, ऐसा अगर कोई कहता है और कहेगा यहाँ तो सपना पूरी हुई, तो कहते ऐसा नहीं, अभी भी उसकी सपना चल रही है, क्योंकि अभी भी वो दर्शन होनी का ही प्रकृति जो है, अन्य प्रकृति जो हुई है उसमें चाहिए। शंकाकार वही पूछ रहा है, सम्यक परिणाम के साथ विरोध नहीं होने से इसकी दर्शन मोह संज्ञा कैसे है? समाधान, नहीं, क्योंकि पूरी तरह से निर्मल और निश्चल परमावगाढ़ लक्षण वाले शायिक सम्यक्त्व के प्रतिबंधक पने की अपेक्षा, सम्यक्त्व का वो घात नहीं करता है परंतु शायिक सम्यक्त्व नहीं होने देता, इसलिए उसको भी दर्शन मानने चाहिए। जैसा जीव का पूरा निर्मल पना है गुण का, वैसा प्रकट नहीं होने देता। इस कथन द्वारा मिच्छत वेदनीय कम्मे इत्यादि रूप से इस गाथा के अर्थ का अनुसरण किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। पहले जो हमने गाथाएं देखी थी उसके अर्थ का यह अनुसरण हुआ। विशेषार्थ, दर्शन मुनि के दो प्रकृतियां मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के क्षय होने के बाद जब यह जीव सम्यक्त प्रकृति का क्षय करने का प्रारंभ करता है, तब यहाँ इसे दर्शन मोह क्षपक कहा गया। इसी पर यह प्रश्न उठा है, यह जीव दर्शन मोहनी का क्षय तो पहले से ही करता आ रहा है, ऐसी अवस्था में यहाँ से लेकर इसे दर्शन मोहनी का क्षपक क्यों कहा? पहले भी हमने उपशामक के लिए भी ऐसा प्रश्न था, अंतर करने के बाद उसको स्पेसिफिकली उपशामक कहा, परंतु उपशामक तो पहले से, जब ने उसके अधकरण शुरू किया तब तक, तब से दर्शन मोह का उपशामक कहा था उसको सामान्य रूप से, परंतु एक्चुअल उपशमने का कार्य कब होगा, वो अंतर के बाद जब वो उपशम आएगा तब। वैसे यहाँ दर्शन मोह का क्षपक कब कहेंगे, जब तीसरी भी प्रकृति की क्षपणा शुरू हो गई तब। फिर पढ़ती हूँ इसको, विशेषार्थ को देखो। दर्शन मुनि के दो प्रकृतियां मिथ्यात्व और समय मिथ्यात्व के क्षय होने के बाद की बात है। 69 पेज पर लिखी जाती है, दोनों ही प्रकृतियों का क्षय हो चुका, समय प्रकृति 8 वर्ष की बाकी है, और जब यह जीव सम्यक प्रकृति का क्षय करने का प्रारंभ करता है तब यहाँ इसे दर्शन मोक्ष सपक कहा गया। इसी पर यह प्रश्न उठा है, यह जीव दर्शन मुनि का क्षय तो पहले से ही करता आ रहा है, ऐसी अवस्था में यहाँ से लेकर इसे दर्शन मुनि का सपक क्यों कहा? इस प्रश्न का जो समाधान किया गया है उसका आशय यह है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये दो प्रकृतियां तो जीव के सम्यक्व गुण की प्रतिबंधक है, उन्हें ही नहीं देती, तो इस सम्यक्व गुण की प्रतिबंधक है ही, इसलिए जब यह जीव इन दोनों प्रकृतियों का क्षय करने में प्रवृत्त रहता है तब तो बिना कहे ही इसकी दर्शन मुनि सपक संज्ञा है, इसमें कोई विवाद नहीं है। किंतु सम्यक्व प्रकृति सम्यक्व गुण की घातक तो नहीं है, क्योंकि वेदक समय दृष्टि के उसके उदय रहते हुए भी सम्यक्व पाया जाता है, इसलिए सम्यक्व प्रकृति का क्षय करने वाले जीव को दर्शन मोक्ष सपक कहना योग्य नहीं है, ऐसी जिसके चित्त में शंका है, यानी उसको हम सपक नहीं कह सकते दर्शन होने का, ऐसा अगर कोई कहता है तो कहते उसकी शंका का परिहार करने के लिए यहाँ सम्यक्त प्रकृति की क्षपणा करने वाले जीव को दर्शन मोक्ष सपक कहा, क्योंकि अति निर्मल और निश्चल परमावगाढ़ लक्षण शायद सम्यक्त की उत्पत्ति सम्यक्त प्रकृति का क्षय होने पर ही होती है। इस प्रकार इस स्थल पर इस जीव की उसकी आया कि उसमें दर्शन मोक्ष सपक इस संज्ञा को दृढ़ करके अब 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्कर्म से लेकर सम्यक्त्व का क्षय करने वाले जीव के उस अवस्था में किए जाने वाले कार्य भेद का कथन करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को आरंभ करते हैं, यानी यहाँ से 8 वर्ष की स्थिति से लेकर उसकी सपना पूरी हो जाए तब तक का वहाँ जो जो बातें बनती है उसको कार्य विशेष कहा, उसके अभी यहाँ बात बताएंगे। एत्तो पाये अंतो मुहूर्तियम स्थितिखंडयम, इसके जस्ट पहले वाला 8 वर्ष की स्थिति बाकी थी, उसके पहले जो सम्यक्त्व का स्थिति कांडक हुआ था सम्यक प्रकृति का वो कितना बड़ा था,
असंख्यात बहुभाग,
कितना असंख्यात अभाग, असंख्यात बहुभाग था वो भी पल्ले का असंख्यात अभाग ही था, असंख्यात बहुभाग प्रमाण पल्ले का असंख्यात अभाग था, क्योंकि पूरी स्थिति असंख्यात अभाग रही थी, उसका असंख्यात बहुभाग लिया था हमने, और अभी कितनी बाकी है 8 वर्ष, इसके आगे अभी जो कांडक का प्रमाण कितना होगा था अंतर्मुख, यही कहते हैं इससे आगे अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति कांडक होता है, ऊपर पढ़ा ना, हाँ छोटा हो गया कांडक, छोटा हो गया
ऊपर नहीं पढ़ा था,
पढ़ा था एक तो पाए अंतमूर्तियम श्रीखंड, शेष रहे 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्कर्म से लेकर इससे आगे सर्वत्र घात के लिए स्थिति कांडक को ग्रहण करता हुआ अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति कांडक को ग्रहण करता है, क्योंकि इस स्थल पर पल्लवम के असंख्यात विभाग आदि विकल्प संभव नहीं है। 8 वर्ष प्रमाण इतनी स्थिति शेष है, अभी बड़ा कांडक भी नहीं यहाँ ले सकते, तो अंतर्मूर्त ले लेंगे, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार पहले के स्थिति कांडकों से इस स्थल के स्थिति कांडक की विलक्षणता का कथन कर, यानी ये यहाँ की विशेषता है। अब पहले के गुणश्रेणी निक्षेप से भी सांप्रतिक गुणश्रेणी निक्षेप की विलक्षणता का कथन करते हुए सर्वप्रथम पहले की ही अपूर्वकरण आदि के गुणश्रेणी निक्षेप के स्वरूप का अनुवाद करते हैं। ये अच्छी बात है कि जब स्थिति कांडक की बात आई तो उन्होंने अपूर्वकरण से क्या क्या हुआ उसकी बात उठाई थी। अब यहाँ तो बात चलेगी गुणश्रेणी निक्षेप की। निक्षेप का अर्थ होता है कितने निषेकों में गुणश्रेणी रूप से रचना हुई, उसको गुणश्रेणी निक्षेप कहेंगे। तो उसका प्रमाण या उसमें जो विशेषता अपूर्वकरण से क्या क्या हुई वो अभी बता के फिर यहाँ की विशेषता बताएंगे। पहले हम सूत्र पढ़ेंगे। अपूर्वकरणस्य पढ़म समयादो पाए जाव चरिमम फलिदोमस्य असंख्येज्य भागत श्रीखंडयम की एदम्नि काले जम पदेशग्ग मोकड्डमाणो सौ रहस्याय आवलिय बाहिर खिदिये पदेशग्गम दे दी तम सौवम। इन्हें अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर जब अंतिम पल्लवपम के असंख्यात वे भाग मात्र वो जो असंख्य जो भाग है असंख्यात भाग स्थिति कांडक है इतने काल में पदेशग्ग ओकड्डमाणो यानी अपकर्षण होता है ना। तो वो जो नीचे जो आता है अपकर्षण होकर तो वहाँ कहाँ दिया जाता है आवली के बाहर उसको दिया जाता है। उसके बाद कहते हैं वो सबसे थोड़ा है रहस्य है सौ रहस्य है रहस्य वो सबसे थोड़ा है तम सोवो में वो थोड़ा है और सबसे रहस्य उदयावली के बाहर स्थिति में समयुत्तराय खिदिये जम पदेशग्गम देवी तम असंख्येज्य गुणम। समय उत्तर उत्तर समय ने नेक्स्ट समय में जितना अपकर्षित द्रव्य है वो असंख्यात गुणा होगा। एवं जाव गुणश्रेणी शीर्षयम ताव असंख्येज्य गुणम यानी गुणश्रेणी शीर्ष तक उसको उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा क्रम से दिया जाता है। तदो गुणश्रेणी शीर्षयादो उवरिमाणांतर ठिदिये पदेशग्गम असंख्येज्य गुणहीनम तदो विशेषहीनम यानी गुणश्रेणी का शीर्ष जो है जहाँ तक गुणश्रेणी रूप से दिया था उसके इमीडिएट जो ऊपर का निषेक है ऊपरी तन स्थिति का पहला निषेक गुणश्रेणी के ऊपर के पहले निषेक में कितना दिया जाता है असंख्यात वे भाग प्रमाण दिया जाता है फिर ऊपर विशेष हीन क्रम से दिया जाता है कितना दिया जाता है ना उस द्रव्य का हिसाब चल रहा है। उसके आगे की स्थिति में विशेष हीन प्रदेश कुंज को देता है आगे भी हाँ अरे सर मैं प्राकृत में से डायरेक्ट हिंदी में आ गई हाँ मैंने पकड़ा बराबर मगर वो हिंदी वाला ले लिया। तदो गुणश्रेणी शीर्षे यादो वरिमाणम अनंतर खिदिये ये मैंने पढ़ा था फिर पढ़ रही हूँ पदेशग्गम असंख्येज्य गुणहीनम तदो विशेषहीनम यानी अंत तक वो विशेषहीन रूप से शेषासुरी छिदिशु विशेषहीनम चेव नत्थि गुणगार परावत्ति यानी शेष स्थितियों में भी विशेषहीन क्रम से दिया जाता है गुणकार रूप से नहीं दिया जाता। अब इसका हिंदी पढ़ेंगे। अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर अंतिम पल्लवपम के असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति कांडक के प्राप्त होने तक इस काल में जिस प्रदेश पुंज का अपकर्षण करता हुआ सबसे रस्व उदयावली बाह्य स्थिति में जिस प्रदेश पुंज को देता है वह स्तोक है। मैंने पहले समय में जो वहाँ दिया था प्रदेश पुंज वो सबसे अल्प था कम था इससे एक समय अधिक स्थिति में अच्छा उदयावली के बाह्य स्थिति का अर्थ होता है इमीडिएट ऊपर उदयावली के ऊपर की एक निषेक इसकी बात यहाँ चल रही पूरी गुणश्रेणी नहीं। अपूर्वकरण में क्या किया उसने वहाँ की जो गुणश्रेणी बनी है उदयावली को छोड़कर मान लेते उदयावली के हम चार निषेक मानेंगे अब जो अपकर्षित जो द्रव्य है वो गुण श्रेणी में किस रूप से दिया जाएगा? तो यहाँ ऑलरेडी पहले तो निषेक पड़े हैं ना सारे, जो कुछ यथा योग्य हो गए उसमें पड़े हैं। अब इतने छोड़कर यहाँ से उसने विशिष्ट द्रव्य दिया, वो कितना दिया? उदयावली के अंतिम निषेक में दिया, उससे असंख्यात गुना यहाँ दिया, और उसके ऊपर भी इस तरह से क्रम से अधिक दिया। यहाँ क्या कहते देखो, उदयावली बाह्य स्थिति में जिस प्रदेश पुंज को देता है वह स्तोक है, यानी गुण श्रेणी के नीचे का निषेक में सबसे कम द्रव्य दिया। आवली चार समय की छोड़ दी, पांचवे में दिया, ख्याल में आती बात? आवली को छोड़कर जो ऊपर का है
गुण श्रेणी का
नीचे का प्रथम नीचे, उसमें सबसे कम दिया, उसके आगे पढ़ेंगे। इससे एक समय अधिक स्थिति में जिस प्रदेश पुंज को देता है वह उससे असंख्यात गुना है। ये दूसरे निषेक में उससे असंख्यात गुना दिया, पहले निषेक में कम दिया, दूसरे में उससे असंख्यात गुना। जिसे हम अंक संदृष्टि में देखते हैं, मान लेते हैं 85 परमाणु नीचे अपकर्षित किए, तो पहले नीचे के निषेक में एक दिया, दूसरे में चार दिया, तीसरे में 16 दिए, चौथे में 64 दिए, उसके आगे और असंख्यात गुना आएगा, 85×4 आएगी नीचे, फिर उसका उसी पद्धति से क्रम से दे देंगे। हाँ, एक में जितना दिया वो उदयावली में जितना है उससे, जितना दिया था उससे तो असंख्यात गुना। और ये उदयावली में जो ऊपर से दिया हुआ द्रव्य वो बहुत थोड़ा दिया था, इतना ही दिया था, ये उदयावली में दिया हुआ बहुत थोड़ा दिया था, अभी यहाँ इतना एक्स्ट्रा दिया हुआ, ये ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग, और ये एक्स्ट्रा जो दिया है उसकी बात है। वो गुण श्रेणी के नीचे के निषेक में बहुत कम दिया, सेकंड निषेक में असंख्यात गुना, तीसरे में उससे असंख्यात गुना, चौथे में उससे असंख्यात गुना, कब तक? जब तक उसका शीर्ष यानी टॉप मोस्ट प्राप्त हो तब तक ऐसा ही दिया, ये गुण श्रेणी शीर्ष तक असंख्यात गुना असंख्यात गुना दिया। अब यहाँ पढ़ेंगे देखो, इस प्रकार गुण श्रेणी शीर्ष के प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थिति में असंख्यात गुणा प्रदेश पुंज देता है। प्रत्येक स्थिति में यानी गुण श्रेणी के प्रत्येक निषेक में, आगे पढ़े।
ये गुण श्रेणी सत्ता पहले हमने देखी थी जो वो अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण और उसके ऊपर कुछ संख्यात भाग में, हाँ वो तो प्रथम हमने देखी थी कि यहाँ से यहाँ पे
यहाँ भी वैसा ही दिया देखा था।
तो अपूर्वकरण के पहले आगे भी जो विक्षेप होगा वो भी गुण श्रेणी रूप से ही शुरू हो जाएगा। अतप्रवृत्तकरण में जो अंतिम एक आवली का काल जो अपूर्व अतप्रवृत्तकरण का काल है उसके ऊपर से गुण श्रेणी रचना होगा,
ऐसा नहीं कहना है। यहाँ से लेकर अपूर्वकरण शुरू हुआ,
हाँ
उदयावली का पहला समय वो अपूर्वकरण का पहला समय है।
आगे हमने क्या देखा था
गुण श्रेणी का आयाम कितना है?
वो आयाम हमने देखा था अपूर्वकरण अभिवृत्तिकरण प्लस
थोड़ा और,
हाँ थोड़ा और।
तो यहाँ से गिनो ना उसको, आयाम यहाँ से काउंट करो, उस काल से इसका आयाम से कंपेयर कर रहे। उदयावली के बाह्य ये तो नक्की है, अब ये कितने नीचे कितने निषेक कितने हैं? तो अपूर्वकरण के समय प्लस अनिवृत्तिकरण के समय प्लस और थोड़े इतने निषेकों में इसको दे देना, ये गुण श्रेणी का आयाम हुआ। अब उसमें ऐसे एक एक चलेगा गलेगा, तो कहते हैं गुण श्रेणी तक आ गए ना, असंख्यात गुना असंख्यात गुना। तदनंतर गुण श्रेणी शीर्ष से उपरिम अनंतर स्थिति में, अनंतर स्थिति यानी अभी ऊपर का निषेक, गुण श्रेणी के ऊपर का निषेक, असंख्यात गुणहीन प्रदेश पुंज को देता है। वहां परमाणु कितने दिए? तो असंख्यात गुणहीन दिए, असंख्यात यहाँ जितने दिए यहाँ उससे इतना ही दिया, फिर वो ऊपर विशेषहीन क्रम से चला जाएगा। एडिशनल दिया द्रव्य की बात है, उससे आगे की स्थिति में विशेष हीन प्रदेश पुंज को देता है, विशेष निश्चय से घटते हुए चला जाएगा आगे भी शेष स्थितियों में। यानी ये तो दो निषेकों की बात है, ऊपर तक ऐसा ही होगा। ऊपर तक कहाँ तक?
एक उदयावली छोड़कर,
उदयावली ने अति स्थापना वाली छोड़कर,
अच्छा
एक आवली छोड़कर, हाँ सब में उसमें गुण श्रेणी होगी, गुण श्रेणी तो उसमें भी ऐसे। ये जो रेफरेंस है ये तो गुण श्रेणी तो सभी कर्मों में हो रही है, परंतु उसका जो गुण श्रेणी का जो प्रमाण होगा या उसका जो आयाम जितना इसके बीच में बहुत ज्यादा होगा। देखो उसके आगे की स्थिति में विशेषहीन प्रदेश पुंज को, आगे भी शेषतक स्थितियों में विशेषहीन विशेषहीन ही प्रदेश पुंज देता है, गुणकार परिवर्तन नहीं, यानी गुणकार रूप से वहां नहीं देता, विशेषहीन रूप से ऊपर तक चला जाएगा। किसमें? जो गुण श्रेणी में था ना पूरा, वो पूरा ही उसने कांडक रूप से ग्रहण किया, पूरा ही कांडक रूप से ग्रहण किया, केवल नीचे का आवली छोड़ा, एक उदयावली को छोड़कर। फिर भी कांडक होने के लिए जितना काल लगेगा उतना एक एक निषेक भी गल जाएगा नीचे, तो अंतिम फाली का ही निषेक कम मिनिमम पॉसिबल हो जाएगा। कांडक का प्रमाण भी एक एक समय कम होगा कि नहीं होगा?
होगा एक एक समय,
इसलिए चरम पाली में उसका स्थिति सत्कर्म मिनिमम बताया।
हाँ। तो यहाँ पे जो सपना होती है विख्यात होती के लिए वो सही होगा, वो अनिवृत्तिकरण के काल में हुआ, किसे सम्यक विख्यातों का सही हुआ वो भी वही अनिवृत्तिकरण,
बिल्कुल उसी अनिवृत्तिकरण,
और किसे सम्यक का
वो भी उसी अनिवृत्तिकरण, अभी अनिवृत्तिकरण समाप्त नहीं हुआ, उसके लिए अन्य तीन अदक करण आदि नहीं होते। कल बात चल रही उसी की बात चल रही
कल बात हुई थी
उसी की बात चल रही पहले शायद ऐसा कहीं पड़ा था, विश्राम लेता है फिर
तीन करण होता है, वापस तीन करण होता है, वापस
तीन करण होता है, याद है मूर्त का
विश्राम भी करता है
यहाँ उसकी बात।
तो यहाँ पे तो इसकी
अभी कंटिन्यूएशन में ले लिया, यहाँ पर पहले हमने पढ़ा था हर एक के बीच में अंतर्मुर्त विश्राम था और फिर दोबारा तीन करण
वापस तीन करण।
अभी यहाँ तो जो यहाँ है उसको पढ़ेंगे, अभी सूत्र का अर्थ कहते हैं,
क्योंकि वहाँ पे हमने चार बार करण परिणाम देखे थे पहले था पीछे,
अभी तो इसी की बात करेंगे हम, क्योंकि अभी ये ये जो कांडक घात चल रहे वो इन कंटिन्यूएशन ले लिए, अभी उसको याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, अभी जो है उसको करेंगे, शायद आगे कहीं कुछ बातें आती है तो बताएंगे। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर सम्यक मिथ्यात्व के अंतिम स्थिति कांडक की द्विचरम फाली के प्राप्त होने तक इस अंतराल में प्रत्येक समय में असंख्यात गुणे श्रेणी रूप से प्रदेश पुंज का आकर्षण कर गुण श्रेणी की रचना करता हुआ, क्योंकि अंतिम समय में कुछ गुण श्रेणी में तो नहीं दिया ना, गुण श्रेणी को भी कांडक रूप से ग्रहण करके संक्रमित हो जाएगा। सर्वप्रथम अपूर्वकरण के प्रथम समय में उदयावली बाह्य सबसे ह्रस्व अनंतर स्थिति में जिस प्रदेश पुंज को निश्चित करता है वह स्तोक होता है। ह्रस्व है लघु
छोट है
अपनी भाषा में पांचवा वाला छोटा ह्रस्व में ये लघु दीर्घ और ह्रस्व स्तोक होता हुआ भी असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण होता है। क्या कहा
ऊपर भी
नेचुरली, क्योंकि हमने देखा था गुणश्रेणी का ही मान नीचे, गुणश्रेणी पहले थी कि नहीं थी वहाँ पर?
थी।
तो गुणश्रेणी जब उदयावली में आती है तभी उसके उसमें उदीर्णा भी होती है और गल भी जाती है।
पर ये तो गुणश्रेणी के ऊपर के निषेध की बात है। गुणश्रेणी के ऊपर के नीचे?
नहीं नहीं उदयावली के ऊपर का है। गुणश्रेणी की रचना करता हुआ सर्वप्रथम अपूर्वकरण के प्रथम समय में उदयावली बाह्य सबसे रस्व अनंतर स्थिति में
प्रथम निषेध का पूर्व
उदयावली के ऊपर का पहला निषेध। पूर्व में पहले भी वहाँ तो कुछ ना कुछ गुणश्रेणी तो चलती रही थी। हम तो देखते हैं ना इतने अधिक असंख्यात गुना नहीं होगी परंतु गुणश्रेणी रूप से तो थी वहाँ पर भी। तो स्तोक होता हुआ भी असंख्यात समय प्रबुद्ध प्रमाण होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि सबसे जघन्य होने पर भी गुणश्रेणी गोपुच्छ में पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण पंचेंद्रिय संबंधी समय प्रबुद्ध पाए जाते। गुणश्रेणी गोपुच्छ का अर्थ समझते? गुणश्रेणी के एक एक निषेक में, गुणश्रेणी की गोपुच्छाकार तो है परंतु उसके एक एक गोपुच्छ में यानी यहाँ एक एक निषेक में समझना। गुणश्रेणी गोपुच्छ यानी गुणश्रेणी का एक एक निषेक। इससे हाँ जितना दिया वो नहीं ऑलरेडी जितना था वो या देखो रस्व वो कौन है? रस्व थी वो यानी जो ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्टिंग जो निषेक है वो छोटा था। छोटा होने पर भी असंख्या समय प्रबुद्ध प्रमाण माल दिया वो असंख्या समय प्रबुद्ध नहीं दिया है वो तो बढ़ते चला जाएगा। यानी ऑलरेडी वहाँ जो निषेक था वो सबसे छोटा था वो रस्व था ना रस्व ने उसमें प्रदेश कम थे
प्रदेश
फिर भी उसमें असंख्यात समय प्रबद्ध पाए गए ऐसा ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि सबसे जघन्य होने पर भी गुणश्रेणी गोपुच्छ में पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण पंचेंद्रिय संबंधी समय प्रबद्ध पाए जाते हैं। इससे एक समय आगे की स्थिति में यानी गुणश्रेणी का दूसरा निषेध जिस प्रदेश कुंज को निक्षिप्त करता है वह उससे असंख्यात गुणा होता है। गुणकार क्या है? तत्प्रायोग्य पल्लोपम का असंख्यात वा भाग प्रमाण गुणकार। इस प्रकार गुणश्रेणी शीर्ष के प्राप्त होने तक यानी गुणश्रेणी का जो अंतिम निषेक है उसको गुणश्रेणी शीर्ष कहते हैं। शीर्ष यानी स्तर वहाँ तक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थिति में असंख्यात गुणा देता है।
तो प्रति निषेक गुणश्रेणी में असंख्यात पर्यक्रमण समय प्रबंध ज्यादा आते
आते नहीं
निक्षिप्त किए जाते
नहीं ऐसा नहीं कहा। दिया जाने वाला द्रव्य असंख्या समय प्रबद्ध नहीं कहा।
अच्छा टोटल
ऑलरेडी वहाँ प्री एग्जिस्टिंग है वहाँ पर उसमें गुणित प्रमाण में द्रव्य दिया जाएगा। वो कितना दिया जाएगा तो हमने देखा था कितना अपकर्षण होता है। अब अपकर्षित होने में जितना अपकर्षित हुआ है उसको हमने अभी पल्ले का असंख्या तो भाग से भाग लेकर उतना जाएगा और ऊपर बाकी बचा हुआ जाएगा। पहले तो असंख्यात लोग का भागार था बाद में वो पल्ले का हुआ वो बात आई थी ना बीच में वो जहाँ जिस पॉइंट पर आएगी वहाँ उसको हम समझेंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं हाँ गुणश्रेणी शीर्ष तक असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा देना। तदनंतर गुणश्रेणी शीर्ष से उपरिम अनंतर स्थिति में असंख्यात गुणाहीन प्रदेश कुंज देता है कहाँ? वहाँ निषेक तो पहले से थे ही थे और ये अपकर्षण होने की विधि तो पहले से ही चली आ रही थी। तो वहाँ के जो निषेक थे वो तो ऑलरेडी उस मात्रा में तो बड़े थे ही थे। अब कितना नया दिया जाता है उसका यहाँ ये जो प्रमाण बताया इसको दिया द्रव्य कहते हैं। या देय द्रव्य कहेंगे। एक होता है दिया जाने वाला और बाद में दृश्यमान द्रव्य कहेंगे। सब देने के बाद उसकी रचना कैसी दिखाई देगी उसको कहेंगे दृश्यमान, और ये जितना दिया है वहां पर उसको कहेंगे देय द्रव्य या दिया द्रव्य। तो गुण श्रेणी शीर्ष के बाद उसके ऊपर के निषेक में कितना दिया जाएगा? असंख्यात गुणाहीन, क्योंकि उस समय अपकर्षित समस्त द्रव्य को तत्प्रायोग्य पल्लवम के असंख्यात भाग प्रमाण भागार से भाजित कर जो एक भाग लब्ध आवे असंख्यात वा भाग कम उसे गुणश्रेणी शीर्ष में निक्षिप्त कर। क्या कहना है? पुनः शेष बहुभाग को डेढ़ गुणानी से भाजित कर जो एक भाग लब्ध आवे उसे अनंतर उपरिम स्थिति में निक्षिप्त करता है। अश्विन भाई इसका अर्थ बताएंगे?
अंतिम गुणश्रेणी शीर्ष के अंतिम निश्चय में जो द्रव्य दिया है उससे ये जो दो डेढ़ गुणानी समान जो निश्चय की रचना हुई नहीं जो द्रव्य है वो ऊपर के निश्चय में कितने है पल्ले के संख्या से प्राप्त प्रमाण निश्चय किए उसमें निश्चित किया हुआ द्रव्य कितना है?
देखो देखो मैं इस कार्य से बताती हूँ। देखो क्योंकि वहां से पढ़ेंगे फिर उस समय अपकर्षित द्रव्य समस्त द्रव्य को कितना द्रव्य अपकर्षित किया है तो जितना द्रव्य था उसको अपकर्षण भागार से भाग दिया। अपकर्षित द्रव्य उसके आगे की बात पहले अपकर्षित जितना किया है उसको तत्प्रायोगिक पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण भागार से भाजित कर जितना द्रव्य अपकर्षित हुआ है उसको पल्ले के असंख्यात भाग से भाग। अब उसमें से जो एक भाग लब्ध आ गया अब इसके आगे का आपको कथन करना है तो एक भाग लब्ध आवे वो कहाँ दिया था? पूरा एक भाग तो गुणश्रेणी में दिया
और बहुभाग हमने ऊपर के लिए
ऊपर दिया था तो जो गुणश्रेणी में दिया है उसमें शीर्ष में कितना दिया तो कहते हैं एक भाग लब्ध आवे असंख्यातवा भाग कम उसे गुणश्रेणी में निश्चित करता। इसका अर्थ बताओ नहीं ऐसा नहीं,
नहीं।
पूरा गुण श्रेणी में दिया हुआ का ही असंख्यात भाग कम किया है उदय वाली की बात ही नहीं उठाई वो दिया तो भी वो नहीं है नगण्य है यही बात बताना चाहते हैं। टोटल हमने यहाँ कितना दिया है उसकी बात चलो
टोटल
एक भाग पूरे गुण श्रेणी में दिया तो उसके पहले दूसरे तीसरे चौथे शीर्ष को छोड़ो बाकी सबकी टोटल कितनी है तो असंख्यातवा भाग
बहुभाग ऊपर
और ये सब में जितना दिया उससे भी असंख्यात गुना लास्ट में दिया। इसलिए कहते हैं कि जितना गुण श्रेणी में टोटल द्रव्य दिया उसका असंख्यातवा भाग कम करके असंख्यात बहुभाग अकेले एक निषेक में दिया गुण श्रेणी शीर्ष में दिया। उदयावली निगलिजिबल है हाँ, 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 दिया जाएगा उदयावली में तो यहाँ से भी जाएगा गुण श्रेणी में से भी उदयावली में जाएगा उदीर्णा तो सब निषेकों में से उदयावली के ऊपर के सभी निषेकों में से उदीर्णा होकर उसमें चली आई परंतु उदीर्णा भी एक टाइप का आकर्षण नहीं है।
तो गुण श्रेणी में यहाँ पे जो निक्षेप होता है वहाँ पे कई प्रमाण नहीं होता है
गुणित प्रमाण में उसको सही कैसे लगाएंगे
गुणित प्रमाण तो
मिथ्यात्व में नहीं होती है परंतु सम्यक प्रकृति में होगी और यहाँ तो बात सम्यक प्रकृति की चल रही है वहाँ सम्यक प्रकृति में तो उदीर्णा कहेंगे हम बाकी दो में उदीर्णा नहीं कहेंगे उसका जो कुछ है सामान्य अपकर्षण कहेंगे ये बात ख्याल में आ रही है ना यहाँ पर, जितना गुण श्रेणी में दिया है अकेले शीर्ष में असंख्यात बहुभाग दिया है, अकेले एक निषेक में, और बाकी भी असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा करते करते सब में सबकी टोटल करो उससे भी असंख्यात गुणा ऊपर है। जैसे हमने 85 का उदाहरण लिया, 85 कैसे दिया, एक दिया, चार दिया, 16 दिए, लास्ट में 64 दिए। अब ये तीनों की टोटल कितनी है, 21 हो गए, और वो 64 है।
ये जो पाली में जो घात होता है वो ही हिसाब दिया से पाली में भी जो लास्ट पाली के
ऐसा ही है। हाँ भी ऐसा ही है, कर्मों का खिरना भी कहेंगे। हमने देखा था 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में कितना कर्म शेष है, अब तक जितना सब गया ना वो असंख्यात का भाग ही गया है। खाली 14वें ने पहले पूर्व संसार अवस्था से ले लिया पूरा। हाँ, जो कुछ उसने खपाया अभी तक वो नहीं के बराबर खपाए कहेंगे। तो ये रहता है क्योंकि नीचे की तीन की मिलकर 21 हो गए, और ये उसके तीन गुना भी हो गए, तीन गुना से भी ऊपर हो गए।
यहाँ पे असंख्यात गुना,
हाँ, तो यहाँ असंख्यात गुना वहाँ असंख्यात का भाग छोड़कर ये इसका अर्थ है। देखो ये पूरा वाक्य मैं फिर पढ़ती हूँ। यहाँ लिखा ना क्योंकि मिला उस समय, यानी गुण श्रेणी के ऊपर असंख्यात गुणाहीन क्यों, इसका कारण चल रहा है। तो गुण श्रेणी में जितना दिया उसका भी मैक्सिमम गुण श्रेणी के शीर्ष में दिया। वैसे तो पल्ले के असंख्यात भाग से भाग देकर एक ही भाग गुण श्रेणी में दिया, बाकी बहुभाग तो ऊपरीतन स्थिति में दिया, पर उसके निशे कितने ज्यादा है कि हर एक के खाते में थोड़ा थोड़ा ही आया है, और यहाँ गुणित प्रमाण में आया। तो कहते उस समय अपकर्षित समस्त द्रव्य को त्रत प्रायोग्य पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण भागार से भाजित कर जो एक भाग लब्ध आवे, जो एक भाग लब्ध आवे है वो पूरे गुण श्रेणी में दिया।
अच्छा, एक भाग लब्ध है उसके बाद कोमा कर देना चाहिए तो क्या थोड़ा क्लियरिटी दिया जाएगी। एक भाग लब्ध आवे,
लब्ध आवे असंख्यात भाग कम उसे, यानी उस एक भाग को असंख्यात भाग कम करके गुण श्रेणी शीर्ष में निक्षिप्त करता है। पुनः शेष बहुभाग को, कौन सा शेष बहुभाग का, अपकर्षित द्रव्य को हमने पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दिया था, एक भाग गुण श्रेणी में दिया था, बहुभाग ऊपर दिया था। अब उस बहुभाग को, बहुभाग कहाँ से कहाँ तक दिया है, गुण श्रेणी के ऊपर के पहले निषेक से लेकर ऊपर तक दिया है, वो अति सपना छोड़ो उसके बाद कुछ नहीं है। तो किस पद्धति से देंगे, जो दिया जाने वाला ऑलरेडी वहाँ प्री एग्जिस्टिंग है उसको छोड़ो, ऊपर से कितना दिया जाएगा उसका हिसाब कैसे करेंगे, ये दिया जाने वाला द्रव्य। तो पहले निषेक में कितना दिया, तो जितना टोटल अपकर्षित दिया है उसको हम सर्वद्रव्य कहेंगे,
उसको दो गुणाहानि से भाग देंगे,
दो से नहीं डेढ़,
डेढ़ गुणा,
उसको डेढ़ गुणाहानि से भाग देंगे। तो यहाँ जितना द्रव्य दिया उसका प्रमाण आएगा पहले, फिर उसमें एक एक से घटता चलेगा। इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, बहुभाग को मिला शेष बहुभाग को डेढ़ गुणाहानि से भाजित कर जो एक भाग लब्ध आवे उसे अनंतर उपरीन स्थिति में निक्षिप्त करता है। क्योंकि जो बहुभाग जो है अपकर्षण वाला जो बहुभाग पल्ले का असंख्यात भाग से भाग देकर जो बहुभाग था वो पूरे ही उपरीन स्थिति में दिया था, जो अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण है अभी
अपूर्वकरण की बात,
अपूर्वकरण की बात है ना, अपूर्वकरण में अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण थी, या जो कुछ हमने बाद में घटकर जो विशेष कम हो गई थी उसकी बात हमने उठाई थी वहाँ,
तत्व लक्ष्य का,
हाँ तत्व लक्ष्य करोड़
से पहले करो अंत कोड़ा कोड़ी थी, पीछे
अनिवृत्तिकरण में तो तत्व लक्ष्य हुई थी, यहाँ अनिवृत्तिकरण की बात नहीं चल रही, अपूर्वकरण की बात चल रही, ख्याल में आई बात। तो यहाँ कहते हैं यहाँ कितना दिया है, तो जितना पूरे उपरीतन स्थिति में जितने अपकर्षित द्रव्य दिया है उसको डेढ़ गुना आने से भाग देंगे तो यहाँ के पहले निषेक में दिया द्रव्य की बात है, उसका प्रमाण आएगा। ये सर्वत्र कहीं भी जब विशेष हीन पद्धति से देते हैं ना, तो उसको निकालने की यही तरीका है। वहाँ तो पूरा निषेक निकाला था हमने, ये दिया जाने वाले द्रव्य की बात है, और वो शादी क्या कुछ कम जो है वो निग्लिजिबल है। हाँ, तो यहाँ तो डेढ़ गुनाहानी कह दिया बस। हाँ, तो उसको डेढ़ गुनाहानी से भाजित कर जो एक भाग लब्ध आवे उसे अनंतर उपरिम स्थिति में निक्षिप्त करता है। गुण श्रेणी के शीर्ष के ऊपर के निषेक में कितना द्रव्य दिया जाता है एक निषेक में, तो इतना ऊपर जितना पूरा द्रव्य दिया था उसको डेढ़ गुनाहानी से भाग देकर एक भाग यहाँ दिया। इस प्रकार इस कारण से, अब इसमें कितना चाहिए आपको याद है, दस हजार शायद आपको याद होगा, इसमें कितना घटता दिया, ये पहले निषेक में कितना दिया बता दिया, दूसरे में कितना देंगे एक छह कम करेंगे, छह कितना होगा, नहीं वो मत उसकी बात नहीं, प्रथम निषेक मालूम है और छह निकालना है, और छह निकालना है दो गुनाहानी से भाग दो।
तो यहाँ पे निक्षिप्त द्रव्य को दो गुनाहानी से भाग
देंगे, इसको दो गुनाहानी से भाग देंगे तो यहाँ का दिया द्रव्य मिलेगा, छह का प्रमाण, छह का प्रमाण उतना हीन देना, सॉरी 32 है तो उतना हीन देना। अभी हमें तो इसके जो ऊपर से जो दिया द्रव्य है, यहाँ जितना दिया था शीर्ष में उसके असंख्यातवे भाग क्यों है उसकी चर्चा से, यहाँ तो बहुत ज्यादा दिया था और यहाँ जो दिया है वो बहुत कम है, तो उसके असंख्यातवे भाग को मान, इसलिए उसको कहा असंख्यात गुणाहीन द्रव्य वहाँ दिया। अब उसके आगे पढ़ेंगे, तदनंतर उपरिम स्थिति में उसके सेकंड निषेक में, उपरिम स्थिति के सेकंड निषेक में विशेष हीन देता है, कितना विशेष हीन देता है यह आगे लिखा है, कितना विशेष हीन है, विशेष का चय का प्रमाण कितना है, कितना विशेष हीन का अर्थ क्या है, चय कितना है, दो गुणहानियों के प्रतिभाग से प्राप्त गोपुच्छ विशेष से हीन देता है। यहाँ जो बताया है ये गोपुच्छ विशेष कहेंगे इसको, यहाँ एक गोपुच्छा का रचना हो गई, यहाँ दिया जाने वाले द्रव्य उसके जो, यहाँ भी चय घटता है ना हर एक में, तो कितना घटता चय है, उस चय का प्रमाण कितना है, तो उसको कहते हैं जो अभी हमने देखा था।
या तो ये जो निक्षिप्त किया द्रव्य को दो गुणानी से भाग देने का, कि प्रथम निक्षिप्त और जो गुणानी के ऊपर का,
दोनों का वही है,
वही देखा ना,
हमेशा गोपुच्छाकार रचना जहाँ जहाँ,
पहले भी गोपुच्छाकार थी उसमें भी दो गुणानी,
अभी ये नई गोपुच्छाकार हो जाएगी। अभी यहाँ का समझना कि जो प्रतिभागी ने भागहार का प्रमाण कितना है, पहले निषेक को दो गुणानी से भाग देंगे तो वह हमें भागहार का प्रमाण मिलेगा। इस प्रकार उपरिम स्थितियों में भी, ऊपर ऊपर के स्थितियों में अपनी अपनी अपकर्षित स्थिति की अतिस्थापनावली के प्राप्त होने के पूर्व तक विशेषहीन विशेषहीन देता है। अभी इसमें और एक शब्द डाल दिया हमने, अपनी अपनी अपकर्षित स्थिति, जब हम अतिस्थापनावली केवल ऊपर ही दिखाते हैं पर हर एक निषेक में से अपकर्षण हुआ है, अब यहाँ बीच में किसी निषेक में से अपकर्षण हुआ है द्रव्य, तो वो कहाँ तक दिया, तो हमने देखा नीचे से देते देते इसके नीचे आवली प्रमाण छोड़कर उसके नीचे सर्वत्र देना, तो जिस स्थिति में से अपकर्षित हुआ है उसके नीचे अतिस्थापनावली छोड़कर वहां तक देना, अब यहाँ से निषेक में से अपकर्षण हुआ है तो उसके नीचे अतिस्थापनावली छोड़कर वहां तक, ये हम लास्ट में जो बताते हैं वो अंतिम निषेक के लिए बताते हैं, उसको अतिस्थापनावली कहेंगे। यह दीयमान प्रदेश कुंज की प्ररूपणा है। बात आई ना यहाँ पर? ये जो सारा हमने गठित किया है, दीयमान यानी जो दिया गया, जो एक्स्ट्रा एडिशनल दिया अपकर्षण द्रव्य, उसी का जो जितना दिया उसको दो गुणाने से भाग दिया, उसका छह मिला हमें, ये सब उस पर घटित करना, क्योंकि उससे इसमें सॉरी दृश्यमान प्रदेश पुंज, ये हमने जो एक्स्ट्रा दिया एडिशनल, ये दीयमान
और दृश्यमान जो आगे के
और देने के बाद अभी जो फाइनल रिजल्ट दिख रहा है वो दृश्यमान। दो शब्द आते हैं, दीयमान ने जो ऑलरेडी पहले थे उसमें एक्स्ट्रा जो दिया वो दीयमान, अब देने के बाद जो रचना दिखाई देगी वो दृश्यमान, वो भी ऐसी गोपुच्छाकारी होती, उसमें भी विशेषहीन ऐसा ही दिखाई देगा, उसमें भी गुण श्रेणी ऐसी दिखाई देगी। तो कहते दृश्यमान प्रदेश पुंज की प्ररूपणा भी इसी प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार पल्लोकम के असंख्यातवे भाग प्रमाण अंतिम स्थिति कांडक के अंतिम समय के अनुत्कीर्ण होने तक, यानी वो तो उत्कीर्ण होना और अनुत्कीर्ण होना है, जब तक वो नहीं गिरती है तब तक द्वितीयादि समयों में भी प्ररूपणा करनी चाहिए, यानी हर समय जो अपकर्षण किया जाता है इसी पद्धति से उसको दिया जाए, भले वो केवल अपकर्षण हो या स्थिति कांडक के द्वारा अपकर्षण हो, उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसी पद्धति से होगा।
तो कांडक स्थिति कांडक कभी चालू होते हैं तभी उसमें भी एक अतिस्थापना छोड़कर उसमें भी ये द्रव्य आएगा, क्योंकि कांडक हो रहे हैं पर
कांडक का द्रव्य कांडक में नहीं जाता, तो कांडक के ऊपर के नीचे के लिए पूरा कांडक की अतिस्थापना है। क्या कहा हमने? देखा है ये इतना बड़ा कांडक ग्रहण किया और इसका द्रव्य नीचे निक्षिप्त हो जाएगा, भले एक फाली दो फाली तीन फाली तुम कहाँ तक चला जाएगा, अभी यहाँ की जो है उसके लिए तो नीचे आती स्थापना छोड़ दो अगली क्रम, परंतु यहाँ का जो निषेय किसके जो परमाणु नीचे आएंगे
वो कांडक,
वो कांडक को लांघकर नीचे आएंगे, तो पूरा कांडक ही उसके लिए अतिस्थापना है। यहाँ कहते हैं ये तब तक चलेगा, कब तक? लास्ट तक, हर समय अपकर्षण होकर इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कहते हैं द्वितीय आदि समयों में भी ऐसी प्ररूपणा करनी चाहिए। 62 पेज पर अभी हम सेकंड लाइन में जाएंगे, क्योंकि उदयावली के बाहर गलित शेष गुणश्रेणी निक्षेप के प्रति सर्वत्र भेद नहीं उपलब्ध होता, यानी ये जो गुणश्रेणी बनाई है उसके ऊपर के नहीं, ऊपर तो नहीं चले जाएंगे परंतु इतने ही निषेकों में वो हो जाएगा, उसका एक एक निषेक नीचे से गल जाएगा, उदयावली में प्रवेश करता चला जाएगा और जो शेष बची है उसी में गुणश्रेणी रूप से माल दिया जाएगा। इस सब अर्थ विशेष को मन में करके नत्थी गुणगार परावत्ति यह वचन कहा है। इस विवक्षित काल में दीयमान और दृश्यमान प्रदेश पुंज का अनंतर कहा गया ही गुणकार क्रम है, वहाँ अन्य प्रकार से गुणकार की प्रवृत्ति नहीं होती, यानी जहाँ जो गुण श्रेणी है वहाँ का जो गुणकार है वही गुणकार रहेगा, अन्य प्रकार से गुणकार की प्रवृत्ति यहाँ नहीं हो।
क्या पूर्व पर भी एक आवली दिख जाएगी, उसके पश्चात जो द्वितीय द्रव्य आता है वहाँ पे भी हम लोग आवली को छोड़ना है ना, जो गुण श्रेणी रूप घटना होती है,
जो पहले गुण श्रेणी थी हाँ। जब वो उदयावली रूप हो जाएगी तब हाँ। उसमें दिया जाने वाला द्रव्य गुणकार रूप नहीं होगा,
वो आवली का,
परंतु वो गुणकार रूप से दिखाई देगी आवली
जब दिखाई देगी,
जब ये नीचे आएगी, मान लेते हैं
अभी ये नीचे के आवली
ये सब चली गई,
अभी निश्चित
अब ये गुणकार ये वहाँ दिखाई तो दे रही है, परंतु इसमें आवली को छोड़कर
नहीं,
यहाँ गुणश्रेणी नहीं नहीं होगी, गुणश्रेणी वही रहेगी
हाँ, पर
परंतु अभी उसमें नहीं दिया जाएगा ये इस तरह से दिया दिखाई देगा इस तरह से, क्योंकि ऑलरेडी उसको गुणश्रेणी रूप से थी और वो उसकी अभी उदयावली बनी। गुणश्रेणी उदयावली में प्रविष्ट होगा आवली में गुणकार रूप से नहीं है, क्योंकि एक एक नीचे कहते टाइम नीचे आएगा तो गुणकार रूप से कहाँ, उसके ऊपर से गुणकार रूप से दिया जाए
तो दीक्षित आवाम का
गुणश्रेणी का आयाम घटते
चला जाएगा,
गुणश्रेणी का आयाम घटेगा और जो पहले ऑलरेडी गुणश्रेणी रूप से माल मिला है वो उदयावली में आएगी फिर जाएगा। इसलिए दिखेगा तो उदय उदय के समय से लेकर थोड़ा ऐसा दिखेगा
हाँ, गुणश्रेणी रूप को दिखेगी
ऊपर और ज्यादा दिखेगा।
तो हमने आगे जो असंख्यात समय प्रदत्त जो देखा था, जो पहले पक्ष असंख्या के बाद असंख्यात गुणता का प्रमाण देखा था, वो पहले समय से ही चालू हो जाएगा, गुणश्रेणी का पहला डिफेक्ट रहेगा नॉर्मल तभी से
वो उन्होंने बताया ना इतने अमुक इतना जब से वो भागाहार चेंज होता है तब से होगा, यानी बीच वाला कोई उन्होंने पॉइंट पकड़ा
दुरापुष्टि।
अब यहाँ हम पांचवी लाइन में आए थे, यानी अन्य प्रकार के गुणकार नहीं होगा, यहाँ जो गुणकार बताया वही होगा। गुणकार क्रिया भेद को कहते हैं, वह नहीं है। ओ क्रिया भेद को यहाँ गुणकार कहा, अन्य क्रिया नहीं होगी यही होगी, वह नहीं है अथवा इस बात का ज्ञान कराने के लिए नत्थी गुणकार परावर्ती यह वचन सूत्र में आया। विशेषार्थ, यह अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर अनिवृत्तिकरण में सम्यक मिथ्यात्व के अंतिम श्रुतिकांड की द्विचरम फाली का जिस समय पतन होता है उस समय तक प्रत्येक समय में गुणश्रेणी और उससे यथासंभव उपरीन स्थितियों में अपकर्षित द्रव्य का किस प्रकार निक्षेप होता है इस तथ्य का स्पष्ट रूप से खुलासा किया गया। विशेष स्पष्टीकरण मूल में किया ही है। यहाँ यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि उपरीतन जिस स्थिति में से प्रदेश पुंज का अपकर्षण विवक्षित हो उस स्थिति से नीचे अति स्थापनावली को छोड़कर उदयावली से उपरीतन प्रथम स्थिति से लेकर अति स्थापनावली से पूर्व तक सब स्थितियों में उसका यथार्थ निक्षेप होता है। जो जो अपकर्षण होता है जिस किसी स्थिति में से, मान लेते यहाँ से अपकर्षण हुआ तो अपकर्षण कहाँ कहाँ दिया जाएगा, उदय के समय में दिया जाएगा, उदयावली में जाएगा, गुणश्रेणी में जाएगा, उपरीतन में जाएगा, कहाँ तक जाएगा, तो जिसमें से दिया है उसको से उसको पकड़कर एक आवली छोड़कर वहाँ तक नहीं दिया जाएगा, अति स्थापनावली के नीचे तक सर्वत्र दिया जाएगा। अब उसके ऊपर आते यहाँ का निषेक का द्रव्य कहाँ कहाँ जाएगा, इसके नीचे अति स्थापनावली छोड़ो इसके नीचे सर्वत्र दिया जाएगा, टॉपमोस्ट निषेक का कहाँ दिया जाएगा, यहाँ की आवली छोड़कर नीचे सर्वत्र। अब वहाँ तो कांडक रूप से जाने वाला है तो उसका तो कांडक के नीचे ही दिया जाएगा, फिर भी बीच वाले निषेकों की बातें बताने के लिए कहाँ है, जहाँ कहीं से भी अपकर्षित हो रहा है वहाँ से एक आवली अति स्थापना को छोड़कर बाकी उदय के समय से लेकर सर्वत्र उसका अपकर्षित द्रव्य दिया जाएगा। इस प्रकार सर्वप्रथम नीचे के अध्वान में गुणश्रेणी निक्षेपादि विषय क्रियाभेद नहीं है इसका कथन कर, अब इससे आगे स्थिति कांड को अनुभाग कांड को और गुणश्रेणी निक्षेप में क्रियाभेद है इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के प्रबंध को कहते हैं। ये जो पहले में पहले बताया कि सम्यक मिथ्यात्व के द्विचरम फाली तक अंतिम कांडक की विचरण खाली तक कोई क्रियाभेद नहीं था, उसको गुणकार परावर्तन परिवर्तन नहीं था, ऐसा कहा यहाँ लिखा ना परावत्ति कहा था, गुणकार परावत्ति नहीं है, यानी इसी मेथड से बात चलेगी, अन्य कोई क्रिया नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है बताया था। अब जो भेद है उसकी चर्चा यहाँ से आरंभ हो जाएगी। जब आठ वर्ष प्रमाण स्थिति रहती है तब यहाँ कुछ भेद होगा, वो क्या भेद होगा वो अभी यहाँ चलेगी, हम देखेंगे पढ़ेंगे। जाधे अठवासठ दिगम संतकम्मम सम्मतस ताधे पाए सम्मतस अनुभागस अनुसमय ओवठना ऐसो ताव एको क्रिया परिवर्तो, यानी यहाँ एक क्रिया परिवर्तन तो ये हुआ। अब तक क्या होता, अनुभाग कांडक घात अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में होता था, अब क्या होगा प्रति समय अनुसमय अपवर्तन, यानी प्रति समय अनुभाग का अनंत गुणाहीन होना, उसको कहेंगे अनुसमय अपवर्तन। अब हम जिसको पढ़ेंगे यहाँ, जिस समय सम्यक्त्व का आठ वर्ष प्रमाण स्थिति सत्कर्म होता है, उस समय से लेकर सम्यक्त्व के अनुभाग का, सभी कर्मों में नहीं हो रहा है हूँ, सम्यक्त्व के अनुभाग का प्रत्येक समय में अपवर्तन होता है।
सम्यक्त्व एक ही बाकी रहा है ना,
दर्शन मुनि का एक ही है, परंतु अन्य कर्मों में अनुसमय अपवर्तन नहीं समझना। सर्वप्रथम यह एक क्रिया परिवर्तन है, परावर्तन है, एक क्रिया एक यहाँ बदल गई, क्या हुआ अनुसमय अपवर्तन सम्यक प्रकृति में शुरू हुआ। पहले जो सम्यक्त्व का अनुभाग द्विस्थानीय स्वरूप रहा है, हमने देखा था वेदक समय को कितने भी काल में काल तक क्यों न रहा, उसका अनुभाग उत्कृष्ट रहता है, अपना अपना जितना है, तो यहाँ भी द्विस्थानीय से अब जाके एक स्थानीय होगा, उसकी अब एक स्थानीय रूप से प्रति समय अपवर्तना प्रारंभ हुई।
ये उत्कृष्ट जो हमने अनुभाग देखा था वो सपना के पहले समय से पूर्वकरण से कम होते जाएगा,
यानी जब सपना का कार्य शुरू हुआ तब से वो बता
अपूर्वकरण के पहले समय से काफी।
हाँ। पहले अंतर्मूर्त काल द्वारा अनुभाग कांडक की रचना करता था, पहले क्या हुआ था, पहले यानी पूर्व अवस्था में, पहला अंतर्मूर्त नहीं, पहले यानी पूर्व में अंतर्मूर्त काल द्वारा अनुभाग कांडक की रचना करता था, यानी एक एक अनुभाग कांडक एक एक अंतर्मूर्त में होता था। अब पूर्व के कांडक घात का उपसंहार कर, कांडक घात का घात हो गया यानी कांडक घात का कार्य समाप्त हुआ, प्रत्येक समय में सम्यक्त्व के अनुभाग की अनंत गुणी हानि रूप से अपवर्तना करता है। सम्यक्त्व का जितना अनुभाग है तो देशघाती सम्यक् प्रकृति, फिर भी उसका अनुभाग अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन प्रत्येक समय में चलता रहता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। पुनः प्रत्येक समय में होने वाली अपवर्तना को इस प्रकार जानना चाहिए, अनंतर पूर्व समय के अनुभाग सत्कर्म से, सत्कर्म किसको कहेंगे अनुभाग का, जो सत्ता में टॉप मोस्ट अनुभाग होगा उसको अनुभाग सत्कर्म कहेंगे। तो अनंतर पूर्व समय के अनुभाग सत्कर्म से वर्तमान समय में अनुभाग सत्कर्म उदयावली से बाहर अनंत गुणाहीन है, उदयावली के बाहर स्थित इस अनुभाग सत्कर्म से उदयावली के भीतर अनुप्रविशमान यानी प्रवेश करने वाला अनुभाग सत्कर्म अनंत गुणाहीन है। क्या कहना चाहते हैं, पूर्व समय का जो अनुभाग था सत्ता में, उससे वर्तमान में जो सत्ता का अनुभाग है वो अनंत गुणाहीन है ही है, पर कहते उदयावली में जो ऑलरेडी प्रविष्ट है वो भी उससे भी अनंत गुणाहीन है। पूरा पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। इस प्रकार दर्शन मुनि के क्षय होने के एक समय अधिक एक आवली पूर्व तक प्रत्येक समय में इसी प्रकार जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें उदयावली का भेद कब तक होगा? जब तक आवली प्लस एक समय बाकी रहेगा तब तक, कृतकृत्य वेदक का आवली और एक समय बाकी है तब तक ये इसी बात चलेगी। उदयावली के ऊपर का उदयावली में आएगा तो अनंत गुणाहीन वहाँ होगा, परंतु उसके बाद जब आवली मात्र ही रहेगी तो उदीर्णा वाली बात नहीं रहेगी।
यहाँ पे जो आवली में जो अनुपात है उसमें भी प्रतीक वही बात होगा ना?
हाँ, यही तो आगे का वाक्य है। उसके बाद एक आवली प्रमाण काल तक उदय में प्रविष्यमान अनुभाव की प्रति समय अपवर्तना पाई जाती है। इसका विशेषांक अभी बताएंगे, कल करेंगे। ये जो विषय है ना अनुसपन, इसको लेते हुए विशेषांक पढ़ेंगे। उनका जावानी के ज्ञान ते तुझे लोकालो सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो।
Namo Ayyaram 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 Namo Ayyaram